संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से केवल कर्तृत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, तो इसका उत्तर है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, क्योंकि कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, तो फिर उसमें कर्तृत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहां सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं रहता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु तेज जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश उन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीर में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं, वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी है। दूसरा अध्याय 24वां 25वां श्लोक। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु रचलोयम सनातन है, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते इत्यादि। तथा अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत है सनातन है। 15:7 अगर ये अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है, सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशी पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, और सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है। वह तो आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। संपूर्ण शरीरों के, सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशी सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है, वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। यह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहां है वहां सुख भोगने लग जाता है। सुख संगे न बदनाती, 14:6। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए।